ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री प्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्ग देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। श्री प्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्ये सुरवर्ज देहिना सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद् हरिमाश्रयेत। श्री प्रह्लाद उवाच। श्री प्रह्लाद महाराज ने कहा तत् उसको साधु अच्छा मन्ने मैं मानता हूँ असुर वर्ज हे असुर श्रेष्ठ देहिनाम शरीरधारियों के लिए सदा सब समय समुद्विग्न सम्यक उद्विग्न ध्यान जिनकी बुद्धि रहती है उनके लिए असद ग्रहात अहम ममेति के मिथ्या आग्रह के कारण हित्वा त्याग कर आत्मपातम आत्मा का पतन कराने वाला गृहं घर गृहस्थी को अंधकूपं और जो अज्ञान में डालने वाला अंधकार से भरे हुए कुएं के समान बनां बन में गतः जाकर जद जो हरि श्री कृष्ण का आश्रयता आश्रय लिया जाए। अनुवाद प्रह्लाद महाराज ने उत्तर दिया हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज जहां तक मैंने अपने गुरु से सीखा है ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहां जल नहीं रहता केवल कष्ट ही मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्टार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए जहां केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है और इस तरह वह भगवान की शरण ग्रहण करे। तात्पर्य हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि प्रह्लाद अभी छोटा सा अनुभवहीन बालक मात्र है अतः वह कुछ ऐसा उत्तर देगा जो मन को भाने वाला होगा, व्यवहारिक नहीं होगा। किंतु प्रहलाद महाराज ने उच्च भक्त होने के कारण शिक्षा के सारे गुण प्राप्त कर लिए थे। जस्यास्ति भक्तिर भगवत किंचना सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्त से कुतो महद्गुणा मनोरथे ना सति धावतो बही। जिसकी कृष्ण में अविचल भक्तिमयी श्रद्धा होती है वह निरंतर कृष्ण तथा देवताओं के सारे सद्गुण प्रकट करता रहता है। किंतु जिसमें भगवान की भक्ति नहीं होती उसमें सद्गुण नहीं पाए जाते, क्योंकि वह मानसिक कल्पनाओं के द्वारा जगत में व्यस्त रहता है जो भगवान का बाह्य रूप है। तथा कथित शिक्षित दार्शनिक तथा विज्ञानी जिस भौतिक स्तर को प्राप्त होते हैं वह सत अर्थात शाश्वत तथा असत अर्थात क्षणिक में अंतर नहीं कर पाते। वैदिक आदेश है असतो मा ज्योतिर्गमय, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह नश्वर सत्ता को त्याग कर शाश्वत स्तर को प्राप्त करे। आत्मा शाश्वत है और शाश्वत आत्मा विषय कथाएं वास्तविक ज्ञान है। अन्यत्र कहा गया है कि अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृह में विनाम। जो देहात्म बुद्धि से जुड़े रहते हैं और जो भौतिक इंद्रिय सुख के स्तर पर गृहस्थ के रूप में जीवन से चिपके रहते हैं ये शाश्वत आत्मा के कल्याण को नहीं देख पाते। प्रहलाद महाराज ने इसकी पुष्टि यह कहकर के की कि जो व्यक्ति जीवन की सफलता की आकांक्षा रखता है उसे सही स्रोत से तुरंत यह समझ लेना चाहिए उसका स्वार्थ जिसमें है और आध्यात्मिक चेतना में वो अपने जीवन को किस प्रकार ढाले। मनुष्य को चाहिए कि वो अपने को कृष्ण का अंश समझे और निश्चित आध्यात्मिक सफलता के लिए उनके चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित हो ले। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति देहात्म बुद्धि के कारण जन्म जन्मांतर कठिन जीवन संघर्ष करता रहता है। अतः प्रहलाद महाराज ने बताया कि इस बारंबार जन्म मृत्यु के दशा को रोकने के लिए मनुष्य को वन में चला जाना चाहिए। तो श्री प्रहलाद महाराज का यह उत्तर बहुत प्रसिद्ध है और श्री प्रभुपाद जी ने इस श्लोक पर कई बार प्रवचन किया है। जो कैसेट में है प्रहलाद महाराज अपने पिता के घर पर ही घर के पास ही गुरुकुल में पढ़ते थे। जब शुक्राचार्य पुरोहित थे दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के गुरु थे तो उनके दो पुत्र शंड और अमर्क बच्चों के गुरु बने। राजा के गुरु थे शुक्राचार्य तो राजकुमार के गुरु शंड और अमर्क, और वे दैत्यराज गृहंत के दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के घर के निकट ही बहुत दूर वन में नहीं वे पढ़ते थे। अन्य बच्चे भी पढ़ते थे और श्री प्रहलाद महाराज जो राजा के पुत्र थे पढ़ते थे। तो प्रहलाद महाराज की विशेषता थी कि जो कुछ भी शिक्षक लोग पढ़ाते थे ये उसको पढ़ते थे और याद भी कर लेते थे पूरा पूरा, सुनते थे ध्यान से और बात पूछते थे तो बोल लेते थे हाँ, लेकिन मन में अच्छा नहीं मानते थे क्योंकि उन शिक्षाओं में स्व पर का आग्रह असद आग्रह, या मैं हूं या मेरा है या तुम हो तेरा, इस प्रकार का असत आग्रह था तो अच्छा नहीं मानते थे पर पाठ कर देते थे। तो गुरुओं ने देखा कि बहुत अच्छा पढ़ा है तो राजा हिरण्यकश्यपु के पास वे लोग ले गए बहुत प्यार से ले गए और सोचे कि राजा कुछ इनाम देगा, हम लोगों को पढ़ाए हैं इतना अच्छा, बहुत अच्छा पाठ बोल देते थे। लेकिन केवल सुनते भर थे, सुनते थे और बोल देते थे, एक बार के सुने, परंतु मन से अच्छे नहीं मानते थे। तो ले गए, हिरण्यकश्यपु को दिए, राजा टेस्ट करेगा कि कैसा सीखा है। तो एकदा सुरराट अंकम आरोप्य पप्रक्ष पांडव, हे युधिष्ठिर महाराज, ये राजसूय सभा में कथा हो रही थी। श्री नारद जी कहते हैं कि हे पांडव, हे पांडव पुत्र, एक बार जब गुरु लोग ले गए थे तो असुर राज, असुरों में राजा हिरण्यकश्यपु श्री प्रहलाद महाराज को अंकम आरोप्य अपने गोद में बैठा, सिंहासन पर बैठा था और गोद में लिया है, गोद में लेकर के पप्रच्छ, कथ्यताम प्रहलाद, बोलो, क्या बोले? तो कहा बोलो, मन्यते साधु जत भवान, तुम्हें क्या अच्छा मानते हो? साधु शब्द उसने कहा कि अब तुमको क्या अच्छा लगता है? तो जैसा श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हिरण्यकश्यपु ने सोचा कैसे ही बोलेगा, बच्चा है, क्या अच्छा बुरा, तो अच्छा बुरा का क्या ज्ञान है, कोई प्रैक्टिकल बात नहीं बोलेगा, ऐसे ही बोलेगा, अथवा ये बोलेगा कि ऐसे शासन करना चाहिए, ऐसे राजा बनना चाहिए। वो सोचता था कि मेरे बाद उत्तराधिकारी यह होगा, तो राजनीति की बात करेगा, ये करेगा। मन्यते साधु जग भगवान, आप जिसको ठीक मानते हो, सही मानते हो, कुछ बोलो। भगवान शब्द कहा, भगवान आदर में अर्थ होता है। पहले कहा आप किसको अच्छा मानते हैं, अपने बच्चे को प्यार से ऐसे बोला जाता है, क्या अच्छा मानते? तो श्री प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया यह श्लोक, तत्सा धुमन्य असुरवर्ग देहिनाम सदा समुद्रग्न धियाम असद्ग्रह हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतोजद हरिमाश्रयतम। हे असुरवर्ग, हे समस्त असुरों के नायक, मैं देखता हूं कि इस संसार में जो देहधारी हैं, जिन्होंने देह धारण किया है, आत्माएं, शरीरधारी आत्माएं, वे सब सदा समुद्विग्न है, हमेशा चिंता में, हमेशा, ये देखी हुई बात है, सदा समुद्विग्न दिया, उनकी बुद्धि सदा डिस्टर्ब है, हमेशा चिंता में, टेंशन में, अनेक प्रकार। क्यों? असद ग्रहात, क्योंकि ये असत को पकड़े हुए हैं। असत का अर्थ है क्षणभंगुर, देह और देह के संबंधी वस्तु आदि, असत है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, लेकिन इसी को असत ग्रहात, असत को, जो रहने वाला नहीं, उसी को पकड़े हुए हैं आग्रह पूर्वक मन में। असत है ना, यह देह मैं नहीं हूं, लेकिन मैं देह हूं और देह के संबंधी मेरे हैं, कितनी बड़ी पकड़ है माया के वास्ते। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस आग्रह से मुक्त हो चुका है कि यह मैं हूं और यह मेरा है? तो ये जो आग्रह है, क्षण क्षण में बैफिल्ड होता रहता है, प्रतिहत होता है, देखता है कि हमारा देह नश्वान है, जा रहा है, उसको स्वस्थ रखना चाहता है, संबंधियों को, वस्तुओं को, घर द्वार को बिल्कुल कंप्लीट रखना चाहते हैं, लेकिन ये तो जाएंगे तो असत हैं, परिवर्तनशील हैं, और अंत में तो सब छूट ही जाएंगे। इस कारण से सदा समुद्र धिया। अतः हे महाराज, पिताजी नहीं कह रहे, हे महाराज राजा है ना, मैं तो इसी को अच्छा मानता हूं, गृह छोड़ करके और वन में जाकर के भगवान श्री हरि का आश्रय लिया, यही मुझे अच्छा लगता है। विशेष करके शिक्षा थी कि आपको चाहिए कि ये घर छोड़ करके और वृंदावन जाकर भजन कीजिए, हरि का आश्रय लिए। ओह, इतना सुना हृदय कष्ट। सुत्वा पुत्र गिरह दैत्य परपक्ष समाहित जहास बुद्धिर बाला नाम भिद्यते पर हित्वात्मपातम गृहमंद कूपम। गृह को छोड़ देने, छोड़ना चाहिए, त्यागने के लिए कह रहे हैं। हित्वा ये कभी अपने आप घर गृहस्थी नहीं छूटेगी, छोड़ना पड़ेगा। तो इसको छोड़ करके हित्वा, क्यों छोड़ करके, क्योंकि आत्मपात है और अंधकूप है, आत्मा का पतन कराने वाला है। आत्मा का पतन क्या है? कृष्ण भावना से गिर जाना, ये आत्मा का पतन है। कृष्ण की याद न रखना, कृष्ण की भक्ति न करना, और गृह अंधकूपम, अंधकूप अंधेर, अंधेर डार्कनेस से भरा हुआ कुआं, वो क्या है? अंधकूप का अर्थ है अज्ञान जिसमें छाया रहा, यह मैं हूं, यह मेरा है, ये है, ये है, यही है अंधकूप। और इस कारण से सदा उद्योग में बुद्धि रहता है व्यक्ति। अतः अंधकूप अज्ञान भर देने वाले इस घर गृहस्थी को और आत्मा का पतन कराने वाले इसको छोड़ करके और वृंदावन में जा करके भगवान हरि का आश्रय लिया जाए, श्री कृष्ण का भजन किया जाए, भक्ति की जाए, यही मैं अच्छा मानता हूं। तत्साधु मन में वो पूछे कि क्या साधु मानते हैं, अच्छा मानते हैं? तो प्रहलाद ने कहा कि मैं इसको अच्छा मानता हूं। हृणकस्तु गोद में लिए था प्रहलाद जी पर हंसने लगा है, जहां सब पहले हंसी आ रही है, ओ अभी क्रोध नहीं किया, हंसी आई। श्रुत्वा पुत्र गिरह दैत्य परपक्ष समाहित, परपक्ष शत्रु के पक्ष में जो परिनिष्ठित बात थी ये सुना। हरि, हरि मतलब श्री विष्णु श्री कृष्ण, परपक्ष समाहित, परपक्ष में समाहित थी अर्थात परिनिष्ठ बात थी। तो जहास हंसा, ठठा करके हंसा, तो जहास बुद्धि बाला नाम भिद्यते पर बुद्धि, उसने कहा हंसते हुए कहा, बच्चों की बुद्धि पर बुद्धि भी दूसरे के बुद्धि द्वारा या शत्रुओं के द्वारा भिद्यते भिन्न हो जाती, कोई बात नहीं है। गुरुजनों के प्रति भी ध्यान से देखा था, बच्चों की बुद्धि पर बुद्धि भी भिद्यते, भिद्यते मतलब कि अपने सिद्धांत से हट जाती है, राजा बनना या भोग भोगना ये सब बात से हट करके और शत्रु के पक्ष की बात कर रहे हैं, तरह हरि का भजन करना चाहिए। तो हंसी आ रही थी, बच्चा है कोई आकर के सिखा दिया होगा, बहुत हल्का ले रहा था हंसा। जहां से बुद्धि बाला नाम भी देते पर बुद्धि भी, पर बुद्धि भी अन्यों के बुद्धि बुद्धियों द्वारा कई लोग लगेंगे प्रीचिंग करने के लिए, तो एक को क्या डिगाना कठिन है, पर बुद्धि भी दूसरे के बुद्धियों द्वारा बाला नाम बुद्धि भिद जाते हैं, बच्चों की बुद्धि नष्ट हो जाती है। हंसा, हंसा इस बात से कि मेधावी है, कोई वैष्णव आया होगा सिखा दिया होगा हरे कृष्ण करो बस करने लगे, बच्चे जल्दी ग्रहण करते हैं है ना, वो बहुत फिलोसफिकल मीमांसा आदि नहीं करते हैं, जो सिखा दिया सीख जाते हैं। सम्यक विधार जता अम्बालो, फिर उन लोगों संत अमर्ष से कहा सम्यक विधार जता अम्बालो गुरु गेहे दुजात भी, प्रतिपक्ष गुरु गेह में ले जाओ, पहले अपने घर ले जाओ इसको बच्चे को, और सम्यक विधार जता ठीक ठीक पढ़ाइए, ठीक ठीक पढ़ाइए। विष्णु पक्ष है प्रतिक्षण न भिद्यता से धीर जाता, जिससे कि इसकी धी इसकी बुद्धि विष्णु पक्ष है, विष्णु के पक्ष में रहने वाले वैष्णवों के द्वारा इसकी बुद्धि कभी भिन्न न हो पा रहे, न भिद्यता अस्य धीर जाता, इसकी बुद्धि भिन्न न हो, ले जाएगा अच्छा से पढ़ाई कीजिए। अगर आप ध्यान रखिए कि कोई वैष्णव स्कूल में आता है क्या, तो फिर संत मर्क ने कहा कि सरकार ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि कोई आया, और आपके घर में यानी आपके घर के पास पढ़ाई हो रही है, यहाँ किसका ही किसकी हिम्मत है कि कोई वैष्णव आ जाए इधर, तो कहता है प्रतिक्षण में, अरे वैष्णव बड़ा भेष बदल बदल कर चलते रहते हैं, छिप करके आते हैं, जेंटलमैन बन करके आते, तो जरा ध्यान रखो कौन कहां से आया। विष्णु पक्ष प्रतिक्षण प्रतिक्षण रहते छिप करके प्रचार करते हैं, वे लोग आकर के सिखाए हमें कि वृंदावन जाना चाहिए, श्री कृष्ण का भजन करना चाहिए, ये और कौन सिखाएगा। यह प्रतिक्षण में कुछ ऐसे वैष्णव होते हैं जो छिप करके रहते हैं, और हो सकता है हमारे राजमहल में भी घुस रहे हो, तो ऐसे इस बच्चे को सिखाया गया, इसलिए सम्यक विधार जता हूं, बच्चे को ठीक से रखिए ठीक से सिखाइए। और सन डमर इसके बाद लाए प्रहलाद महाराज अपने घर पर, गृहम आनी तबाही माह्यु प्रहलादम दैत्य याजका, ये तो दैत्य के याजक थे पुरोहित थे, प्रहलाद महाराज को जल्दी जल्दी लोग घर पर लाए, सरकार की आज्ञा है ठीक से सिखाओ, तो ले गए घर पर, और वहां जाकर के प्रशस्य सुलक्षणया वाचा, पहले प्रशंसा किए बच्चे की, कितना अच्छा लड़का है प्रहलाद, पहले प्रशंसा किए खूब प्रशंसा की, तुम बहुत बुद्धिमान हो, पढ़ने में भी तेज हो, तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है, और सुलक्षणया मधुर वाणी से समप्रिछंत साम भी, और साम नीति से पूछने लगे, पहले ये पता उनको लगाना था कि कौन इसकी बुद्धि को फेरा है, तो पुचकार करके और सराहना करके साम नीति से प्रहलाद महाराज से पूछ, वत्स प्रहलाद भद्रम से, पहले बेटा कहे बेटा प्रहलाद, नाम रख बेटा प्रहलाद भद्रम के, तुम्हारा बहुत बड़ा कल्याण हो, तुम्हारा हित हो, तुम्हारा कल्याण होगा, कल्याण मतलब अभी हम बहुत सुंदर मिठाई खिलाएंगे तुमको, भद्रम के तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा कल्याण हो मतलब अभी हम खिलाएंगे बहुत अच्छा प्रसाद देंगे तुमको, मिठाई देंगे ये देंगे वो देंगे, सत्यम कथय मां मृषा, एक बात हम पूछ रहे हैं हम कौन है जानते हैं, तुम्हारे गुरु है, तो सत्य बोलना, सत्य बोलो और मांद्र से झूठ मत बोलो, दोनों कहे सत्यम कथय मांद्र से, सत्य बोलना झूठ नहीं। बाला नती कुतस, बाला नती कुतो तुभ्यम, ये सब बुद्धि भी पड़ गया। इन सारे बच्चों से भिन्न तुम्हारी बुद्धि कैसे हो रही है? बालन अति बच्चों की बुद्धि और सब खेलने खाने मनोरंजन आदि में लगा हुआ है, तो उनसे भिन्न तुम्हारी बुद्धि कैसे हुई? बहुत शांति से पूछे, कैसे बुद्धि हुई तुम्हारी? ये विष्णु के भजन की बात तुम कर रहे हो, इस प्रकार की कंडम बुद्धि तुम्हारे पास कैसे आई? बालन अति, अति मतलब अतिक्रमण कर ले, बच्चों की बुद्धि से भिन्न कुतस, कहां से, मतलब कौन सिखाया तुमको ये बात? कौन कहा कि विष्णु का भजन करना चाहिए, कृष्ण का भजन करना चाहिए, वृंदावन जाना चाहिए? ये कौन कहा? कौन तुम्हारी को बुद्धि भेद कर रहा है? बुद्धि भेद परकृत स्वतो वा कुलनंदन, हे कुलनंदन, दैत्य कुल का आनंद बढ़ाने वाले, ये जो बुद्धि भेद हुआ है, अन्य बच्चों से भिन्न तुम्हारी मति हुई है, ये परकृत दूसरे के द्वारा सिखाए जाने से हुआ है? स्वतो वा, कि अपने आप कैसे ये बुद्धि हुई है? भण लेताम, तो नहीं बोल रहे थे तो कभी भण लेताम बोलो, श्रोत का मानाम, हमें सुनने की बहुत बड़ी लालसा है, गुरु नाम कुलनंदन, तो हम तुम्हारे गुरु हैं, तुमसे निहोरा कर रहे हैं, बताओ तुम्हारे तुमको कौन बात बताया कि वृंदावन जाना चाहिए और कृष्ण का भजन करना चाहिए? बताओ कौन बताया? तो श्री प्रहलाद महाराज ये सुन करके सबसे पहले भगवान को नमस्कार कर रहे, स्व परश्चित असद ग्राह पुंसान जन्माया कृत विमोहित भियान दृष्ट तस्मय भगवते नमः। यह मैं हूं और यह पर है, यह मेरा है और दूसरे का है, इस प्रकार की बुद्धि जिनकी माया से की गई है, वास्तविक नहीं है बुद्धि, माया के द्वारा, भगवान की माया के द्वारा ये बुद्धि की गई है, और उस माया से विमोहित धिया जो जिनकी बुद्धि भ्रम में डाल दी गई है, मोहित कर ली गई है, ऐसे ही पुरुषों में ये बुद्धि देखी जाती है, दृष्ट जैसे आप लोग हैं, आप लोगों में भी बुद्धि देखी जा रही है, दृष्ट बुद्धि भी पर गया, जिनकी माया से सब हो रहा है उन भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूं। तस्मय भगवते नमः, अद्भुत अचिंत माया के ईश्वर, माया शक्ति के अधिपति भगवान को मैं नमस्कार कर रहा हूं। तो कोई उत्तर हुआ नहीं भगवान की माया से इस प्रकार की बुद्धि होती है, और स्व पर बुद्धि, तो उनको मैं प्रणाम कर रहा हूं। एक गुरु ने कहा, क्या प्रणाम कर रहे हो, ये क्या प्रलाप कर रहे हो? फिर हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हो, कहते हो उसकी माया से ये हो गया, एक प्रलाप है ना? इस प्रकार का प्रवचन उनके लिए तो प्रलाप लगा, बकवास, क्या बकवास कर रहे हो? स जदानु व्रतो पुंसाम पशुर बुद्धिर विभिद्यते, अन्य ऐसा तथान्योहम इति भेद गता सती। प्रहलाद महाराज ने कहा, इस प्रकार की बुद्धि जो स्व पर वाली बुद्धि है, अपना है, पराया है, ये है, मैं हूं, तुम हो, इस प्रकार की जो बुद्धि है पशु बुद्धि है, पशुओं की बुद्धि होती है, और यह बुद्धि तब जाती है, मेरे जैसी बुद्धि तब मिलती है जदा स अनुव्रत, जब भगवान अनुकूल होते हैं, अनुव्रत का अनुकूल, जब भगवान अनुकूल होते हैं तब ये संसारिक बुद्धि चली जाती है, फिर भी वो लोग नहीं समझ रहे हैं, सीट ठोक रहे थे, परेशान हो गए इस लड़के से। अरे बोलो ना कि कौन आया है, एड्रेस बताओ, मायापुर से आया कि वृंदावन से, बोल। इस तरह से वो पूछ रहे हैं, कहां से आया हो, विष्णु का भक्त कहां से आया और कौन कौन तुम्हारी बुद्धि को फोड़ रहा है, फोड़ा है। तब ये कहते सये सयात्मा स्वपरेत्य बुद्धि दुरत्यानो क्रमणो निरूप्यते मुह्यन्ति जद्वर्त्मनिवेदवादिनो ब्रह्मादयो ये सभिनत्ति मे मति। प्रहलाद महाराज कहते हैं वही प्रभु श्री कृष्ण श्री विष्णु समस्त जीवों के हृदय में रहते हैं, आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में। तो ये परमात्मा ही स्व पर के रूप में व्यक्त हो रहा है। लोग कहते हैं कि मैं हूं, ये हूं, वो हूं, ये हूं, ये मेरा है, ये तेरा है, इस प्रकार का असद आग्रह वास्तव में भगवान की माया से होता है। तो भगवान ने मेरी बुद्धि को फेर रहे हैं, मेरी बुद्धि में भेद डाल रहे हैं। तो कौन है भेद डाल रहा है, सबसे कहते दूरत्य अनुक्रमण और निरूप्य थे, उनका लीला, उनकी उनका चरित्र, उनकी महिमा कह पाना कठिन है, कह पाना कठिन है। दूरत्य अनुक्रमण उनकी उनकी लीलाएं, उनका महिमा, उनकी महिमा कहना कठिन है। निर्यंत जद वर्तमानी वेदवादी दो, यहां तक कि वेद जानने वाले, वेदों का रहस्य जानने वाले ब्रह्मा आदि देवता भी जिनके विषय में भ्रमित हो जाते हैं, सब भिन्नत्व में मत, वही प्रभु हमारी बुद्धि को भेद रहे हैं, इन बच्चों से भिन्न कर रहे हैं, अपने चरण कमलों में लगा रहे हैं। कहने का आशय यह है मेरी संसार विषय मति नहीं है, भगवत निष्ठ बुद्धि है और वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, फिर भी नहीं समझ रहे थे। संदमर्क ने कहा कोई दृष्टांत द्वारा समझाओ, दृष्टांत द्वारा समझाओ कौन है वो, तब उसी को पकड़ करके लाया जाए। राजा हिरण्यकश्यपु से खबर देना है ना कि कौन तुम्हारी बुद्धि को भेदा है, ये कह रहे हैं कि वो भगवान और दुरत्य अनुक्रमण है, ब्रह्मा आदि भी उनको नहीं पकड़ सकते। फिर भी तंग हो गए तो प्रहलाद महाराज उदाहरण देकर समझाते हैं, यथा भ्राम्यज ब्रह्मण स्वयमाकर्ष सन्निधौ तथा ने भ्रमते चेत चक्रपाणे जदृच्छया। जैसे आकर्ष चुंबक के पास स्वयं ही बिना कुछ किए लोहा घूमता रहता है चुंबक के चारों तरफ, उसे छपने की कोशिश करता है, देखा है अपने चुंबक जो बिजली मोटर होती है तो इसमें चुंबकत्व पैदा किया जाता है और उस चुंबक के कारण पंखी घूमने लगती है और मशीन चालू हो जाती है, इस तरह से घुमाता रहता है। तो चुंबक है आकर्ष को आकर्ष कहते, आकर्ष सन्निधौ, चुंबक के पास आने पर, सन्निधि में आने पर, जैसे हे ब्रह्मन अयह भ्राम्यति, लोहा घूमता रहता है अपने आप चला जाता है, ऐसे ही चक्रपाणी के सन्निधि से मेरा चित्त उनके तरफ चला जाता है, घूम जाता है, उनके पास चला गया, उनके चरण कमल में, उनकी लीला में, उनके चिंतन में। तो कुछ तो उस चक्रपाणी के साथ तुम्हारा संग कैसे हुआ, कब हुआ, कब संग में आया, पूछते हैं चक्रपाणी सुनकर के तो डर ही गए होंगे, सुदर्शन चक्र लेने वाला बोल रहा है, तो उसके साथ कभी तुम्हारा संग हुआ कहाँ हुआ? तो कहते जद्रिच्छया, जद्रिच्छया, जद्रिच्छया का सबका उत्तर है कि हम दैव जोग से या हमारे भक्ति से प्रसन्न थे, श्री नारद जी को हमारे पास भेजे, मतलब कहने का आशय ये है कि चक्रपाणी के साथ हमारा संग कैसे हुआ इसको बता रहे हैं। वैसे चक्रपाणी तो स्वयं ही है हृदय में परमात्मा रूप से, लेकिन अब वे लोग जानना चाहते हैं कहाँ संग हुआ उसका, कब आया था मिलने, तो जद्रिच्छया बोल रहे हैं। जद्रिच्छया तो सर्वत्र रहता है, कहीं भी संग हो सकता है, इस तरह से बोल रहे थे। जब सौंड और अमर्क ने, दोनों गुरुओं ने सुना प्रहलाद की बात, वे तो चकित हो गए। दिनों राज सेवक, वो तो राजा के सेवक थे और राजा के लड़के को पढ़ाना है और बुद्धि विपरीत हो रही है, तब पहले तो सराहना किए थे प्रहलाद की, अब भर्सना करने लगे, भर्सना करने लगे, डांटने लगे। पहले मिठाई देने को कहे थे और अब डांटने लगे कि अरे बहुत धूर्त है, छिपा रहा है, नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा कि कहाँ का वैष्णव था, किस देश में आया था, कि बताएगा दल। तो ऐसे बोले, आनीयताम अरे वेत्रम अस्माकम जसस कर, बेंत लाओ, तो बेंत माने कोड़ा मारने के लिए, घोड़ा को, घोड़े को मारते हैं ना, अरे बेंत छड़ी, पहले शिक्षक लोग पढ़ाने में छड़ी रखते थे, अब तो कुछ भी छड़ी फड़ी नहीं है, है ना? तो अन्यतम अरे बेत्रम, बेत लाओ तो, बेत लाओ तो, कोई लाता नहीं, वास्तव में ऐसे ही तड़क भड़क कर रहे थे। अन्यतम अरे बेत्रम अस्माकम अजसस कर, हम लोगों के का नाम बदनाम कर देगा ये, हम लोगों का नाम बिगड़ेगा कि इन लोगों ने सिखाया है विष्णु की भक्ति, इसको अजस कर, अजसस कर, यह हम लोगों को अपकीर्ति देगा, राजा को शक होगा कि यही लोग सब सिखा रहे हैं। आनियताम अरे बेतलम अस्माकम जसस कर, कुलांगारस दुर्बुद्धे चतुर्थो अशोभित दम, हम समझा रहे हैं सामने के से, प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो साम दाम भेद और दंड नीति है, तो चौथी नीति इसके लिए है। बस शास्त्र जो कहता है कि ऐसे तो सीधा पीटना चाहिए, लाओ लाओ बेत लाओ, वो तो डर गए थे हिरण कस्तु से कि बाप रे बाप, हमारी नौकरी चली जाएगी, जान भी चली जाएगी अगर वो सुन लिया कि इस तरह की बात। इसके बाद कहा है, स्पेशल चेतावनी दिया है कि ले जाओ घर पर और इसको सिखाओ अच्छा से, अगर दोबारा फिर बोलेगा वहां जाकर के, तब तो राजा तो पहली बार हंसा, लेकिन अब इसके बाद तो हमारी मरम्मत कर देगा, बहुत पीटेगा, जान ले लेगा, वो तो घबरा गए। तो कहते हैं बेत लाओ, बेत लाओ, कुलांगार, अपने कुल के लिए अंगार है, नाशक है, कुलनाशक, दुर्बुद्धि है, क्या इसकी बुद्धि है, राजा का बेटा है, अगर राज भोगने की इच्छा रहे, विष्णु की भक्ति छोड़ दे, इसको समझना चाहिए नहीं, विष्णु उसका शत्रु है, इसके बाप का दुश्मन है और उसी का देवहोती बन रहा है, कितनी बुद्धि खराब है, राजा के बाद उत्तराधिकारी नहीं बनेगा, राज नहीं भोगना चाहते, तो दुर्बुद्धि है, इस दूषित बुद्धि के कारण ये नहीं समझ रहा है कि इसके बाप के साथ और विष्णु के साथ क्या रिलेशन है। लाओ लाओ बेट लाओ, कोई ला नहीं रहा था। हो सकता है कोई दौड़ करके लाया होगा, बेट लाओ। कुलांगारस दुर्बुद्धे चतुर्थो अशोधितः दमः, इसके लिए चतुर्थ नीति ही ठीक है। वो क्या? दमः, दंड नीति। दो चार बेंक मारा जाएगा तो इसके बाद कह देगा ये आया था, ये सिखाया हमको, यहां से आया था, वृंदावन से आया था, छोड़ दीजिए। वो लोग ये सोच रहे थे, ये प्रहलाद महाराज तो हंस रहे थे। दैत्य चंदन बने जातोयम कंटक द्रुमा, दैत्यों के चंदन वन में यह बबूल का वृक्ष कहां से हो गए। कंटक द्रुमा, कंटक द्रुम कहते हैं जिस वृक्ष में, जिस द्रुम में कांटे काटे हों बड़े बड़े। दैत्यों का जो कुल है उसमें एक से एक बड़े बड़े चंदन वृक्ष हैं, हिरण्यकश्यप, चंदन द्रुम है, चंदन के वृक्ष है। यह अनुभव है उन गुरुओं का, चंदन के वृक्ष है। तो दैत्य चंदन बने, दैत्यों के चंदन वन में जहां सभी केवल चंदन है, सुगंध बिखेर रहे हैं, इतने बड़े बलवान राजा आदि से, और उसमें ये कंटक द्रुम, ये बबूल उत्पन्न हो गया। तन्मूल मूल परसुर विष्णु नालाई तोर भक, इसको पता नहीं है कि दैत्यों का जो वंश है वो चंदन वृक्ष के समान है, चंदन वन के समान, और उसको तन मूलोन मूल उसके वंश को उन्मूलित करने के लिए विष्णु परशु है, तो उस परशु में ये नाल का काम कर रहा है। नाल मतलब बेंट, जो कुल्हाड़ी को हाथ से लेकर के काटिए किसी वृक्ष को तो नहीं काट पाएंगे हाथ, लेकिन उसे बेंट लगा लीजिए इतना लंबा बें तो इसके बाद काटिए तो बहुत अच्छा से काटे। जब मैं पहले पहल भागवत कह रहा था कहीं नालायित का अर्थ नालायक किया था, नालायक अर्थ नहीं होगा इसका, नालायित नाल बना हुआ बेंट बना हुआ परशु है विष्णु चंदन वन को काटने के लिए, तो उसने बेंट का काम करा है, मतलब तत्सहाय अभी से सहायता करने लगा विष्णु, विष्णु के पक्ष में हो करके करेगा क्या, दैत्यों का वंश काटा जाएगा, विष्णु काटने पर पड़ा हुआ है और उसने ये बेट का काम किया, अपने घर का लड़का ही उसके पक्ष में हो गया। बहुत तड़क भड़क कर रहे थे, पहले प्रशंसा किए तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मिठाई देंगे करेंगे, अब दैत्य चंदन बने जाते हम कंठ कर दूंगा। तन्मूलन मूल परसुर विष्णु और नालाई तोर भक अर्भक, अरे ठीक है अभी तो बच्चा है, अरे जवान होगा तो क्या करेगा, कितना विष्णु का पक्ष लेगा, बच्चा होकर के कहता है कि विष्णु का भजन करना चाहिए, इसको थोड़ा भी शर्म नहीं आया अपने बाप के सामने उनके दुश्मन का नाम ले रहा था। कितना प्यार से राजा पूछा, ये तो हम लोगों का भाग्य था कि वो हंसने लगा है, अभी दूसरी बार हंसेगा नहीं, दूसरी बार वो कहेगा वो तुम्हारा भेद खुल गया, गुरुओं का कहा हमारे लड़के को ले जाते हो, हमारा खा रहे हो, हमारा वेतन ले रहे हो और जाकर के विष्णु की भक्ति पढ़ा रहे हो। वो लोग तो कांपने लगे, सरकार हम नहीं पढ़ाए हैं, तो उसने कहा तब कोई आया था ना, न पर प्रणीतम न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, हम नहीं पढ़ाए इसको कुछ भी, न तो कोई दूसरा आकर के प्रीचिंग किया, ये जो भी बोल रहा है सरकार नैसर्गिक मतिरस्यराजन, इसकी बिल्कुल स्वाभाविक बुद्धि है, जन्म से ही निसर्ग से ही इसकी बुद्धि है, अब आप हम लोगों पर तो दोष दृष्टि मत कीजिए, सरकार हमारा हार्ट अटैक कर जाएगा, हम आपके सेवक हैं। अब इंद्र के शत्रु हैं आप, कहां इंद्र शत्रु कहें कि आप इंद्र के शत्रु हैं। हम लोग तो आपकी कृपा से जी रहे हैं, ब्राह्मण हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन आप क्रोध मत कीजिए, नहीं तो हमारी हालत बिगड़ जाएगी। सरकार हम नहीं पढ़ाए हैं और कोई दूसरा नहीं आया है, हम सुबह से शाम तक एक एक सेकंड देखते रहते हैं, कोई भी नहीं आया, कोई नहीं बदला। यहाँ डिक्टेटिंग मशीन रखी गई है, कोई ऐसा आया नहीं। एक एक आदमी का चेक करके हम लोग यहाँ भर्ती करते, कोई नहीं आया। तो इस तरह से हिरण्यकश्यपु पूछेगा, तब तो वो भी पूछेगा कि तुम्हारी बुद्धि कहाँ से हुई। जब प्रहलाद महाराज अब बोलेंगे श्रवणम कीर्तनम विष्णु, तब पूछेगा क्रोध। तो कल उस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। पहले तो साधु पूछेगा, साधु क्या मानते हो, तो ये साधु मानते हैं। और बेस्ट एजुकेशन क्या सीखे हो इतना दिन स्कूल में, सबसे बेस्ट अपने गुरुओं से जो उत्तम शिक्षा, तो उत्तम शिक्षा की चर्चा कल की जाएगी। और इस तरह से हम लोग बढ़ेंगे अब भगवान नरसिंह के अवतार की तरफ। हरे कृष्ण।